Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
द्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तानगर व्यासेमदेवहितं यदायुः सस्ते न इन्द्रो वृधस्रवा सस्ते न पूखा विश्ववेदाः सस्ते नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः सस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शांति शांति ही। परमात्मा की और गुरुजनों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के विषय में। साधक जहां पर पहुंचना चाहता है वह प्राप्तव्य नाम से भी रहित है और रूप से भी रहित है। जो नाम से और रूप से रहित है तो उसको प्राप्त करेगा कैसे? हम देखते हैं कि मूल में दो उपाधि लगी है। एक उपाधि होती है नाम, दूसरी उपाधि होती है रूप, तीसरी तो और कोई है नहीं। तो जो नाम से भी और रूप से भी अस्पृष्ट है उसको कैसे प्राप्त करेगा? तो प्राप्त करने के लिए यहां पर प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया यहां पर मुख्य है। एक प्रक्रिया अवस्था त्रय का परीक्षण है, दूसरी प्रक्रिया क्या है? कार्यकारण भाव का परीक्षण। जगत में व्यवहार तो बहुत करते हैं हम, लेकिन हम लोग परीक्षण नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। अब विचार के बिना विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना समाधि सड़ संपत्ति नहीं, और समाधि सड़ संपत्ति के बिना मुमुक्षता नहीं। एक क्रम होता है जिसको मुंडक सूत्र बताई, परीक्षण लोकान कर्म चेतन। परीक्षण के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए परीक्षण यहां पर बता रहे हैं अवस्थात्रय का परीक्षण। तीन प्रकार की अवस्था होती है, तीन प्रकार का स्थान। इसको स्थान शब्द से श्रुति बोलते यहां पर, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्ति स्थान। स्थान का मतलब क्या? जहां पर अहम बुद्धि हो रही है, जिसमें रह करके अहिमान करता है मैं, तो तीनों में होता है, जागृत में भी और सपनों में भी और सुषुप्ति में भी, स्थूल में, सूक्ष्म में और कारण में। पंचकोश, पंचदशीकार जिसको बोले, स्थूल शरीर को लेकर के एक कोश हो गया अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर को लेकर के तीन कोश हो गए, है ना, प्राणमय, मरोमय, विज्ञानमय, और कारण शरीर को लेकर के आनंदमय। तो पांचों कोशों में, तीनों स्थानों में और तीनों शरीरों में कौन सी बुद्धि हो रही है? अहम बुद्धि, मैं करके। मैं कहने से एक नहीं आ जाता है, दो आ जाते हैं, उपाधि भी और उपहित चिदाभास। तो स्वरूप उपाधि भी नहीं है और स्वरूप उपहित भी नहीं है। क्या है? दिनों, ये दोनों जहां पर अध्यस्त है, उपाधि भी अध्यस्त है और उपहित भी अध्यस्त है, शरीर भी अध्यस्त है और चिदाभास भी अध्यस्त है। मूल कौन होता है? तुरीय। तुरीय को प्राप्त करना है, जिसके विषय में यहां पर बताया, अयम आत्मा चतुष्पाद, चार पाद है, चार पाद। अरे भाई, आत्मा का तो दो ही पाद भी नहीं है और चार पाद कैसे हो गया? तो कह रहे कि एक पाद का नाम क्या बता दिया? विश्व। जागृत अवस्था में जो अहिमान करता है, उस चेतन का नाम, चिदाभास जीवात्मा का नाम क्या हो गया? विश्व हो गया। और दूसरा पाद क्या है? तेजस। तेजस स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी, उसका नाम हो गया तेजस। ये पाद कह दिया, पाद। पाद क्यों कहा? चारों पाद हो गए ना, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। तीनों पाद क्या है? ये साधन है। साधन को भी क्या कहते हैं? पाद। जैसे पैर से आप व्यवहार करके एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, है ना, तो इसी प्रकार ये पाद हो गया। विचारात, विचार यहां पर पाद, विचार करेंगे, अवस्था बदलती जाती है लेकिन अवस्था को जानने वाला नहीं बदलता है। आत्मा का अस्तित्व सर्वदा है, आत्मा के अस्तित्व का अपलाप तो कोई कर नहीं सकता है। तो स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत का अपलाप हो गया और आत्मा का अपलाप नहीं हुआ, इसलिए जागृत आत्मा का स्वरूप नहीं, ये विचार हो गया, है ना। तो विचार होने से ये हो गया साधन, सीढ़ी, सीढ़ी ना, ये सीढ़ी के द्वारा छत के ऊपर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, और ऊपर चले गए तो फिर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, उतरने के लिए तो आवश्यकता होती है जब उतरते हैं, लेकिन ये स्वरूप ऐसा है कि एक बार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो उतरना नहीं पड़ता है, हैं? तुरिया में जब एक बार प्रतिष्ठित हो गया तो तीनों क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बाधित हो जाएगा, और इसका अभिमानी जो था, है ना, ये संज्ञा भी, ये भी बाधित हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे एक परमात्मा में क्षेत्र गया, क्षेत्र भी क्या हो गया? कल्पित हो गया, है ना। तो क्षेत्र जब परमात्मा से भिन्न नहीं हुआ तो क्षेत्र क्या किसका नाम होगा भाई? आपके सामने क्षेत्र हो तब ना आप क्षेत्र क्यों कहलाएंगे, बात पड़ में ना। आपके लिए दृष्ट यदि है तब आप दृष्टा कहलाएंगे। आपको ये ज्ञात हो गया तो ही एक ब्रह्म से अतिरिक्त दृश्य भी नहीं है, तो दृश्य रहा नहीं तो दृष्टा किसका नाम होगा? दृष्टा संज्ञा भी बाधित हो जाएगी। बात पढ़ में ना। इसी प्रकार से एक तुरीय चैतन्य शुद्ध ब्रह्म से ये तीनों अवस्था कुछ भी नहीं है, है ना? तो बाधित हो गया, है ना? बाधित मतलब क्या कि अधिष्ठान से भिन्न कुछ भी नहीं है। रस्सी का ज्ञान से सर्प बाधित होता है, मतलब क्या? रस्सी में ना सर्प पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा, हो गया ना? तो अधिष्ठान में वस्तु के अत्यंता भाव का निश्चय होना, इसको कहते हैं बात। अत्यंता भाव मतलब पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं, उसको कहते अत्यंत, उसका निश्चय होना। क्या होना? निश्चय हो जाना, इसको कहते हैं बाप, है ना? तो तुरीय में जब एक बार प्रतिष्ठित हो गया साधक कि अपना स्वरूप तो शुद्ध है, है ना, अब उसको आम अस्मि ब्रह्म के रूप से यदि अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया तो तीनों अवस्था कैसी हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। जैसे एक चीनी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चीनी से बनने वाले जितने भी पदार्थ है, गणेश है, चूहा है, राक्षस है, जितने भी है, आपको कौन सा ज्ञान है? एक चीनी का ज्ञान, बस चीनी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हो गया ना? तो आकार भी बाधित हो गया, रूप और नाम भी बाधित हो गया, तीसरी उपाधि तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये जानने का साधन होने से, तुरीय में प्रतिष्ठित होने का साधन होने से इस तीनों को क्या कह दिया? पाद। पद्यते प्राप्यते अनिनायति पाद। इस प्रकार व्युत्पत्ति करेंगे तो पाद शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? साधन, ठीक है ना? तो साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है, है ना? तो किसको प्राप्त करता है? तुरीय को प्राप्त करता है। तुरीय प्राप्तव्य है, है ना? प्राप्त का प्राप्तव्य, जिसका विस्मरण हो गया उसको याद करके जानना, प्रतिष्ठित हो जाना। इसलिए तुरीय चैतन्य प्राप्तव्य होने से उसको भी क्या कह दिया? पाद। वो साधन नहीं है, वो शब्द है, है ना? पद्यते प्राप्यते इति पादः, जिसको प्राप्त किया जाता है उसको भी क्या कहते हैं? पादः बोलते हैं। चारों को पाद कहने का तात्पर्य उसको पकड़ में रखिएगा। तीनों साधन होने से पाद हुआ, और चौथा जो हो गया तुरीय। तुरीय का क्या अर्थ होता है? चौथा, चौथा जिसको चतुर्था बोलते हैं संस्कृत में, उसको दूसरा नाम क्या है? तुरीय। चतुर्नाम पूर्णम इति तुरीयम, है ना? तो चौथी जो संज्ञा हुई, चौथा जो संज्ञा है, ये किसको लेकर गए? ये तीनों की अपेक्षा से। चौथा वास्तविक है ही नहीं, है ना? चौथा वास्तविक है ही नहीं, लेकिन इसकी अपेक्षा से वो चौथा हो गया, तीनों की अपेक्षा से। विश्व तेजस प्राज्ञ, इसकी अपेक्षा ये तीनों का जो अधिष्ठान है, स्वरूप, तीनों जहां पर अध्यस्त है, कौन कौन? उपाधि भी और उपहित भी, दोनों को समझ लो, अवस्था भी और अवस्था का अभिमानी भी, है ना? ये सब जो है तुरीय चेतन में अध्यस्त होने से उसको प्राप्त करना चाहता है, वहीं पहुंचना चाहता है तुरीय में, है ना? तो एक प्रक्रिया बताई, तो स्वप्न का तक हो गया था, तो सुसुप्ति अभिमानी का नाम क्या बताया? प्राज्ञ, पंचम मंत्र में प्राज्ञ कह दिया। और भाई सुसुप्ति, सुसुप्ति किसका नाम है? कह दिया कि यत्र सुप्त न कंचन कामम कामयते। कामना कहां पर होती है? कामना होती है जागृत में होती है, नहीं, अज्ञान के कारण कामना होती है कि बिना अज्ञान से भी कामना होती है, नहीं होती है, हा? होती नहीं होती है बिना अज्ञान से कामना, हा? नहीं होती है। फिर ज्ञानी लोग भाई इसको ये प्राप्त हो जावे, भक्त को ज्ञान प्राप्त हो जावे, है ना, संसार में वर्षा हो जावे, तो इच्छा नहीं करता ज्ञानी, करता है कि नहीं, हा? नहीं करता है। अरे भाई बसिठ जी ज्ञानी थे कि नहीं, उनके मन में एक बार हो गया अरे चलो आज भगवान राम का दर्शन कर लें, तो इच्छा कैसे हो गई, हा? वो इच्छा क्या है, बाधित होती है। अरे ज्ञान होने के बाद ही मन का व्यापार होगा कि नहीं होगा, खाने पीने की इच्छा नहीं होगी भाई, एक रोटी ले आओ, तो महात्मा लोग नहीं बोलते हैं, ज्ञानी लोग नहीं बोलते हैं, हाँ आज रसगुल्ला खाने का मन करता है, बोलते हैं कि नहीं, है ना, हाँ। तो बिना अज्ञान से भी इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा क्या है, बाधित है, वो समझ में ना, मन तो व्यापार करेगा ही करेगा, ऐसे नहीं कि ज्ञान हो गया तो सब बराबर हो जाएगा, रोटी दाल चावल सब बराबर हो, ऐसा है क्या, हाँ। ज्ञान होने से पहले जैसे चावल में दाल को मिलाकर खाता था, ऐसा ही खाएगा ना ज्ञान होने के बाद, ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद जो है दाल को पहले खा लेगा फिर चावल को सूखा सूखा खाएगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी मन बाधित होकर के अपना व्यापार करता है, इसलिए किसी प्रकार का विरोध नहीं है, समझ में है ना। जैसे आपको दृष्टांत बताया ना, एक जैसे मूर्ति को चीनी से बनी हुई मूर्ति को जो बेचता है उनको चीनी का ज्ञान है, चीनी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अलग अलग नाम होने पर भी अलग अलग आकार होने पर भी चीनी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हो गया ना। एक चीनी के ज्ञान से, एक ज्ञान से है ना, जितने भी भेद ज्ञान हो रहा है वो बाधित हो जाएगा, और बाधित होकर के व्यवहार करेगा कि नहीं। कौन सी मूर्ति चाहिए, गणेश जी की, लो गणेश जी की मूर्ति है कि नहीं, हाँ। रावण की मूर्ति चाहिए, लो रावण की मूर्ति है, तो उनको भेद ज्ञान है कि नहीं, हाँ भेद ज्ञान है, हाँ। कौन सा ज्ञान से बाधित हो गया, हाँ एक चिन्नी के ज्ञान से सारे जो मूर्तियों का जो भेद ज्ञान है वो बाधित हो जाएगा, तो बाधित होकर के व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना। इसलिए श्रुति बोलते कि एकस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यही है, एक चिन्नी के ज्ञान से ही सारा ज्ञान हो जाता है, मतलब बाधित हो जाता है कि चिन्नी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए व्यवहार हो जाएगा, है ना, विरोध नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी में जो इच्छा होती है वो बाधित इच्छा, बाधित अनुवृत्ति बोलते हैं उसको वेदांत, है ना, विरोध नहीं है। लेकिन हम लोगों की इच्छा क्या है, अज्ञान पूर्वक इच्छा है, अज्ञानी की इच्छा क्या है, है ना, अज्ञान पूर्वक इच्छा है, ये बंधन का हेतु है, है ना। तो बाधित अनुवृत्ति से होने वाली इच्छाएं वो बंधन का हेतु नहीं है। तो सुसुप्ति के बारे में क्या बताया, यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते, सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है तो कोई कामना नहीं होती, जागृत में कामना होती है, है ना। और दूसरा कहा कि न कंचन स्वप्नम पश्यति, स्वप्न सुसुप्ति में देखता है नहीं देखता है, है ना। तो दोनों विशेषण के द्वारा भाई ये किसका भी निवर्तन हो गया, स्वप्न का भी हो गया और जागृत भी हो गया। कोई बोलेगा भी स्वप्न में तो कामना होती है, नहीं होती है, स्वप्न में कामना होती है कि नहीं, होती है ना। तो फिर न कंचन कामम कामयते, जहां पर कोई कामना नहीं होती है कहेंगे हैं, तो जो भाई ये तुम्हारा जागृत का कैसे निवर्तन हो जाएगा, वो तो स्वप्न में भी कामना की निवृत्ति होती है, ये कामना होती है, बात पढ़ में ना। इसलिए यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, दो विशेषण के द्वारा दोनों का हो गया, एक साथ हो गया, क्योंकि दोनों में बराबर है कि नहीं है ना। अरे जागृत में भी तो स्वप्न देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं? स्वप्न का पदार्थ भी स्वप्न ही है, मिथ्या है, और अभी क्या सत्य को देख रहे हैं क्या? हाँ, तो ये भी तो स्वप्न ही है। तो जहां पर स्वप्न नहीं देखता कहेंगे, है ना, जहां पर स्वप्न नहीं देखता है, जहां पर कामना नहीं करता है कहेंगे, तो फिर इसका निवर्तन कैसे होगा? कहने का मतलब क्या, जागृत और स्वप्न में क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है अंतर? हाँ, क्योंकि स्वप्न का पदार्थ भी स्वप्न ही है कि नहीं? और जागृत का पदार्थ भी क्या है? ये भी तो स्वप्न है ना भाई, सो करके तो देख रहा है। किसमें सोए हैं? हाँ, स्वरूप से अभी भी सोए है और स्वप्न भी सोए है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं भाई ये सोना जो है ना, सोना है कितने प्रकार के है? तीन प्रकार के। सोना मतलब शयन करना, ये जो अलंकार पहनते हैं वो सोना नहीं कह रहा हूं मैं। सोना कितने प्रकार के है? तीन प्रकार के, ठीक है ना। एक तो गाढ़ नींद में सो जाते हैं, वो भी सोना ही है। स्वरूप का ज्ञान कहाँ है? स्वरूप से वहां पर भी सोए हैं, है कि नहीं? और स्वप्न में जाते हैं, वो भी तो सोता है और क्या करता है, वहां पर भी स्वरूप का ज्ञान तो होता नहीं। और अभी क्या है? जागृत में भी तो सोए हैं ना, है कि जागे हैं? हाँ, स्वरूप से यहां पर भी सोए हैं, इसलिए सोना कितने प्रकार के है? तीन प्रकार के। सुषुप्ति भी शयन ही है, स्वप्न भी शयन है, और आपका जागृत भी शयन है। लेकिन इतना अंतर है जागृत स्वप्नों में, है ना, किसके लिए? मंद अधिकारी के लिए। मंद अधिकारी के लिए बताना पड़ता है ना भाई, मंद अधिकारी के लिए तीन सत्ता है, समझ में ना, है? और आपके मध्यम अधिकारी के लिए दो सत्ता है, और उत्तम अधिकारी के लिए तो एक ही सत्ता है भैया। सर्वम खलोइदम ब्रह्मा, ये किसके लिए बताया? उनके लिए तो एक ही है बस, समझ में गया ना। और यहां तक जो नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा? अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराना है तो भाई ये पदार्थ है मिथ्यात्व का निश्चय कराना पड़ेगा, हो गया ना। तो ब्रह्म से अतिरिक्त जितने भी होगा, चाहे स्वप्न का हो चाहे जागृत का हो, वो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा, हो गया ना। इसलिए दोनों मिथ्या हो गई, स्वप्न का भी है और जागृत का भी है। तो दोनों कैसे हैं? प्रातिभाषिक है, समझ में आया कि नहीं? स्वप्न पदार्थ भी प्रातिभाषिक हो गया क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है, वो दृश्य हो गया। जो भी दृश्य होगा वो मिथ्या होगा कि नहीं? तो स्वप्न का पदार्थ भी दृश्य है और जागृत का भी क्या है? दृश्य है। दोनों दृश्य होने से स्वप्न भी और जागृत भी क्या होगा? मिथ्या होगा। मिथ्या जो होगा तो प्रातिभाषिक हो जाएगा। ये कौन सा अधिकारी के लिए? मध्यम अधिकारी के लिए भी दो सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो मंद अधिकारी है, बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, वो तो नहीं मानेगा। अरे भी स्वप्नों का पदार्थ भले ही मिथ्या हो, अभी लड्डू खा रहे इसको कैसे मिथ्या कहोगे? भाई पैसा दे करके खरीद करके दुकान से लाते हैं तब खाते हैं, इसको कैसे मिथ्या कहोगे? है ना, इसलिए उसके लिए समझाना पड़ता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक है, इसलिए तीन सत्ता हो गई मंद अधिकारी के लिए। पारमार्थिक है ब्रह्म की सत्ता, रस्सी में सर्प, स्वप्नों के पदार्थ, ये हो गई प्रातिभाषिक सत्ता, और व्यवहारिक सत्ता दुकान से खरीद करके जो लाते हैं, नहीं तो बनाकर खाते हैं जो लड्डू, ये हो गया क्या? व्यवहारिक। ये कौन से अधिकारी के लिए? हाँ, इसको पकड़ में रखिएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं है, है ना। कहीं पारमार्थिक सत्ता के लिए बोल देते हैं, कभी प्रातिभाषिक के लिए, और कभी व्यवहारिक, कोई अंतर नहीं है। अधिकारी को ध्यान में रख करके श्रुति अलग अलग तरीका से बोलती है, और जो है विद्वान लोग भी अलग अलग तरीका से बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए तुम्हारा मत मतांतर भी है, है, कोई अद्वैत वेदांत को सिद्ध करता है कोई विद्वान, कोई विशिष्ट अद्वैत को करता है ना, केवल कोई द्वैताद्वैत को करता है, ये सब किसको लेकर है? अधिकारी कहां? अधिकारी को लेकर के। किसको लेकर के? अधिकारी को लेकर, कोई विरोध नहीं है, है ना। तो कहना क्या है, जिसमें कोई कामना नहीं होती है, जिसमें कोई सपना नहीं होता है, वो अवस्था क्या है? सुषुप्ति। ठीक है। अच्छा, ये सुषुप्ति अवस्था की क्या विशेषता है भाई? कह रहे देखो, सुषुप्त स्थान, सुषुप्ति में जो अहिमान करता है चेतन, उसका नाम क्या है? सुषुप्त स्थान बोल दिया, सुषुप्त स्थान। सुषुप्तम स्थानम यस्य, स्थान जिसका सुषुप्त हो, सुषुप्ति अवस्था हो। स्थान मतलब क्या? अहिमान करने का है, जो है अभिमान करने की जगह है। कहाँ पर अहमबुद्धि हो रही है? वहां पर अज्ञान में हो रही है, अज्ञान। मैं कुछ नहीं जाना नहीं बोलता है उड़ने के बाद। तो सुषुप्ति में तीन प्रकार की वृत्ति होगी ना, बताए ना। सुषुप्ति में कितने प्रकार की वृत्ति होती है? किसकी? अंतकरण की है, अज्ञान की? अंतकरण की नहीं होती है। अंतकरण की हो जाए तो क्या होगा? अंतकरण की हो जाए तो क्या होगा? सुषुप्ति नहीं होगी, आपको सुख नहीं मिलेगा, वहां पर भी आप थक जाएंगे, नहीं थकेंगे? अरे भाई, स्वप्न में भी मन थकता ही नहीं थकता है? मन में कोई भी व्यापार हो, चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो गया ना, मन में व्यापार होने मात्र से ही, क्रिया होने मात्र से ही थकावट आ जाएगा। समझ में कि नहीं? मन में कितना बढ़िया भी भोजन खाओ करो, मन नहीं थकेगा, थकेगा ना। इसीलिए सुषुप्ति मन का व्यापार नहीं होता है। तो अज्ञान के तीन प्रकार की वृत्ति हो जाएगी। एक तो अहंकारावृत्ति, इसलिए मैं कुछ नहीं जाना बोलता है, मैं कहने से अहंकारावृत्ति हो गई, ठीक है ना। और सुख से सुहा कहने से सुखाकार वृत्ति भी हो गई अज्ञान की, ठीक है ना। और अज्ञानाकार वृत्ति भी स्वयं अज्ञान हो गई, नहीं जाना। सच में आया? तो तीनों जो है अज्ञान की वृत्ति है, उसको कौन प्रकाशित किया? साक्षी प्रकाशित किया। सच में ना, इसलिए उड़ने के बाद जिसका अनुभव हुआ था है ना, उसका संस्कार पड़ गया था। किसमें संस्कार पड़ा? संस्कार किसमें रहा?